आज हम सातवें स्कंद में से तीसरा अध्याय और दो वृत्तियां हैं 26 और 27। इट्स वेरी नाइस। अभी हिरण्यकशिपु बोल रहे हैं, हमें बराबर समझ लेना चाहिए कि जो जीव में भक्ति नहीं होती है कृष्ण के प्रति, रति, उसको रति बोलते हैं संस्कृत में, अट्रैक्शन, यू नो क्या बोलते हैं, आकर्षण, हिंदी में हम आकर्षण बोलते, कृष्ण के प्रति आकर्षण ना हो उसका बहुत भरोसा ना किया जाए। जिसमें भक्ति नहीं है वो कब क्या बोलेगा और कब घूम जाएगा उसका कोई पता नहीं है। कहते हैं चार चीजें कही हैं कि एक तो फायर का भरोसा न करें, अग्नि का भरोसा नहीं कर सकते, है ना। ऐसे नहीं कि यहाँ दरवाजा जल जाए और हम ऐसा सोचे कि ये तो छोटा है जलने दो, वो छोटे में से बड़ा हो जाता है और कब आपको भी खत्म कर देगा वो भी कुछ पता नहीं, तो फायर का हम विश्वास नहीं करते। फिर वाइल्ड बीस्ट यानी ये टाइगर नहीं, लायन टाइगर, इनका भी भरोसा नहीं किया जाता। वो कितना भी आप छोटे से बड़ा करो उसको बहुत अच्छी तरह से, मगर वो बड़ा हो जाएगा आपको ही खाया जाएगा, उसका बिल्कुल भरोसा नहीं। तो वाइल्ड बीस्ट का भरोसा ना हो, फायर का, अग्नि का भरोसा ना हो और पानी का भरोसा नहीं, कभी नहीं, जहां आपको पता ना हो वहां कभी ना डालें अंदर डुबकी, है ना। पता नहीं वो कितना गहरा है, पता नहीं नीचे जमीन है या खड़क है, क्या है कुछ पता नहीं है। इसलिए ये जो हार्बर जाते हैं ना, ये हमारा भी हार्बर है यहाँ, क्या बोलते हैं इसको, बंदरगाह, पोर्ट, पोर्ट, तो ये पोर्ट के नजदीक जब जहाज आते हैं ना तो उसकी क्रीक होती है, यानी कुछ ज्यादा पानी होता है, कुछ ऊपर खड़क आ जाती है, तो वो जहाँ क्रीक होती है उसके ऊपर ये लोग लाइट हाउस बांधते हैं, तो और लाइट हाउस वो 24 घंटे वो लाइट घूमती रहती है, तो दूर से जो जहाज आए ना तो उसको दिखे तो वो लाइट हाउस वो फिर वो उनको वार्निंग देता है कि यहाँ नजदीक मत आइए, यहाँ खड़क है, नहीं तो वो खड़क को लग जाए वो जहाज तो वहीं टूट जाए, इतना होता है। तो हमेशा लाइट हाउस होता है। तो ये बातों का हम बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि पानी में हमेशा तो लाइट हाउस होते नहीं है, हमें पता नहीं है क्या है और क्या नहीं है, और हम गिरे तो मुमकिन है हम कहीं अटक जाएं, कहीं पत्थर के नीचे आ जाएं, कहीं कुछ हो जाए, तो पानी का भी भरोसा हम नहीं करते। और चौथी बात यह है कि ये मटेरियलिस्टिक आदमी, यानी जो खाली खाली प्रकृति के जीवन में बसता है, वो आदमी का भी हम भरोसा नहीं कर सकते। तो वैसा ये हिरण्यकशिपु है। हिरण्यकशिपु का हमने जरा ख्याल रखना चाहिए, हिरण्य यानी गोल्ड, सोना, है ना, सोना हमें बड़ा पसंद है, है ना, सोने के न पहने तो भी पीला पीला स्ट्रैप हो तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, है ना, क्योंकि सोने का कलर बड़ा अच्छा है, तो सोना बहुत पसंद है हमें, वेल्थ, इसको पैसा संपत्ति कहते हैं, डॉलर, है ना, पता है डॉलर, पता है ना डॉलर, अभी डॉलर कोई मुझे बताए ना, वहां से 50 की नोट बताए ना, भागवत छोड़ के मैं वहां चल जाऊं। तो ये बात है हमारी। तो जो ऐसे आदमी होते हैं उनके ऊपर भरोसा न किया जाए, क्योंकि उनके दिल में किसी के लिए कुछ भावना नहीं होती है, किसको कुछ नहीं होता है, तो इसलिए उनका भरोसा न किया जाए। हम भरोसा रखें और वो विश्वासघात हो जाए, हम बस बुरा कर भरोसा रखें तो धोखा कर दें। तो ये ऐसे हिरण्यकशिपु का स्वभाव है, मगर इसमें एक बात अच्छी है हिरण्यकशिपु में, वो आपको पता होगा कि ये जय विजय के अवतार हैं। जय विजय दो वॉचमैन थे वैकुंठ में, और कुमार, फोर कुमार, चार कुमार सुने आपने, जो उन्होंने, वो ब्रह्मा के पुत्र थे कुमार, और ब्रह्मा को, ब्रह्मा का कर्तव्य था कि ये प्लेनेट पर लिविंग एंटिटीज सब पैदा करें, ज्यादा बढ़ाए। तो ब्रह्मा के जब ये चार पुत्र हुए तो उनको उन्होंने बिठा के कहा ब्रह्मा ने कि बोले अब तो ये पृथ्वी भरने का काम हमें करना है, आप जल्दी शादियां कर लें और ये प्रजा बढ़ाइए। तो उन्होंने हाथ जोड़ के कहा पिता आपकी आज्ञा बराबर है मगर हम मान नहीं सकते आपका, क्योंकि हमने तो ये सोचा है कि हमें ये झंझट में पड़ना नहीं है। इसलिए वो चारों कुमार वो 5 साल से बड़े हुए ही नहीं, वो 5-5 साल के ही है और उन्होंने कभी कपड़े भी नहीं पहने, खाली भगवान का नाम लिया। एक दिन भगवान को मिलने की उनको मर्जी हुई तो वो चले गए भगवान को मिलने के लिए। तो ऐसे बच्चे थे छोटे छोटे बच्चे थे, तो वो वहाँ जो वॉचमैन थे उसको लगा ये कौन आया भगवान, तो बोले हमें भगवान को मिलना है। अरे जा बोले तुम्हारे कौन मिलेगा, नहीं जाने दिया उसने। जय और विजय दोनों वॉचमैन थे उन्होंने, तो नहीं जाने दिया। तो कुमार तो गुस्से हो गए भगवान के बीच में और हमारे बीच में आ जाता है, तो उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि भाई तुम्हारे को 3 लाइफ ये मनुष्य जन्म लेना पड़ेगा, और मनुष्य जन्म ही नहीं मगर आप राक्षस के जन्म में होगे और हमेशा कृष्ण के साथ युद्ध करोगे। तो उसमें से एक हिरण्यकशिपु और इसका भाई हिरण्यक्ष, तो इन्होंने दोनों ने बहुत ही गड़बड़ की यहाँ आकर। ये हिरण्यकशिपु तो जरा ठीक था मगर इसका बड़ा भाई तो बहुत बड़ा डीमन, बड़ा राक्षस, उसने सबके साथ झगड़ा किया। फिर झगड़ा करने के लिए कोई नहीं रहा तो पर्वतों से जाके झगड़ा किया, पर्वतों में मार मार के उसका भी चूरा कर दिया। फिर सारी दुनिया में पर्वत ही खत्म हो गए, पर्वत ही नहीं रहा, वो इधर उधर घूमता कि मैं किसके साथ झगड़ू किसके साथ झगड़ू। फिर नारद मुनि मिले उसको एक बार, अरे बोले तू सबसे झगड़ रहा है, तू ऐसा कर तू विष्णु से झगड़ा कर। तो बोले कहाँ है विष्णु, मिलेगा बोले तेरे को एक दिन, विष्णु के साथ झगड़ा कर जब तेरा संतोष होगा। तो उसको कोई झगड़ने को नहीं मिला। तो ये प्लेनेट है ना, ये मृत्यु लोग, ये घूमता है सूर्य के आजू बाजू, ऑर्बिट में है ये, कि ऑर्बिट को क्या कहते हैं हिंदी में पता नहीं, इसका रास्ता है, ये प्लेनेट का एक डेफिनेट रास्ता है, तो उसमें ये घूमता रहता है। तो ये ऑर्बिट में हमेशा रहता है, ये अपने रास्ते से अलग नहीं पड़ता ये प्लेनेट, ये मृत्यु लोग। तो इसको इतना गुस्सा आया वो प्लेनेट को उसने रास्ते में से खींच लिया और समंदर में डाल दिया, ये पृथ्वी को निकाल के और समंदर में फेंक दिया। समंदर में जब फेंक दिया तो पृथ्वी तो नीचे चली गई, सब वो ब्रह्मा और सब गए भगवान के पास, भगवान बोले ये कुछ करो अब इसको, ये बहुत गड़बड़ कर रहा है इसने, अब तो वो पृथ्वी लेके समंदर में डाल दिए, इतना वो शक्तिशाली था। तो भगवान ने सोचा कि अब कुछ ना कुछ करना चाहिए, बोले हर्ष नहीं मैं आता हूँ, क्योंकि जब अधर्म बढ़ जाए तो भगवान को ही आना पड़ता है। तो फिर वो आए नीचे और वो वराह के रूप में आए, तो वराह के रूप में आए तो दोनों ट्रस्ट थे उनके, वो नीचे समंदर में जाके और पृथ्वी को उठा के ऊपर आए तो ये खड़ा था, कौन है बोले तू, मैं बोले पृथ्वी को बचाने वाला हूँ, काहे को बचा रहा है, उठा के फेंक दे बोले, नहीं बोले क्या बात क्या झगड़ा करना है बोले तेरे, अच्छा बोले झगड़ा करता हूँ। भगवान ने पृथ्वी को उठाया और पानी पर रख दिया बाजू में, फिर भगवान सब कुछ कर सकते हैं, वैसे पानी में या आप एक पत्थर डालें तो पानी में नीचे चले जाएं, मगर भगवान की शक्ति से वो पृथ्वी भी पानी के ऊपर रहेगी और वहीं के वहीं रही, भगवान की अचिंत्य शक्ति है। इसलिए भगवान के शक्तियों को अचिंत्य कहते हैं, नहीं वो कभी पुराणम अनुशासितानम अणोरणीयम समनुस्मरेत्य सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम, क्योंकि उसका हम सोच नहीं कर सकते कि कैसे ये किया है उन्होंने, मगर उनकी शक्ति से वो पृथ्वी पानी पे रह गई। और फिर इसने झगड़ा करना शुरू किया, अब भगवान के साथ झगड़ा करे तो कौन जीतने वाला है, कोई जीतेगा भी, तेरा नाम क्या हा? क्या अरे तू रोज बदल जाता मां के, कभी लाल कभी पीला आज सफेद है, बड़ा से मेरे पहचान में नहीं आती, हाँ तुम तो हमारा मित्र है, नहीं फ्रेंड है ना, है ना, है ना, देख हंस रहा है, नहीं तो दुश्मन होता तो रोते फिर एक दूसरे, वेरी गुड चेतन, स्कूल में जाता है चेतन, वेरी गुड। तो झगड़ा किया, झगड़ा करने के बाद उसकी तो हार ही होने वाली थी, भगवान ने तो जब भी उसको खत्म कर दिया। तो वो जब खत्म हो गया, जब वो पृथ्वी को लेकर और भगवान ने फिर उसके रास्ते में डाल दी और जब से आज तक घूम रही है, और कोई हिरण्यक से निकल जाएगा तो और ये इसको खींच के डाल देगा। तो ये उसका भाई है, छोटा भाई हिरण्यकशिपु, और इसकी शक्ति, ये हिरण्यक की शक्ति बहुत बड़ी थी और उसका शरीर भी बहुत बड़ा था। आपको एक बात बता दूं फिर हम ये सोचें, मुझे माफ करें मगर क्या क्या कहूँ आपको पता नहीं लगता। तो ये हिरण्यक्ष कितना बड़ा था इसकी कल्पना रावण का नाम सुना है, रावण जो सीता का हरण करके ले गया था वो, तो रावण को उसके दादा बलि महाराज उन्होंने ये कल्पना दी थी। जब रावण को पता चला कि भैया ये सीता को मैं नहीं रख सकता और राम आएगा और उसके साथ झगड़ा करना पड़ेगा, तो वो तय हो गया था कि अब युद्ध होगा, राम और रावण के बीच में जरूर युद्ध होने वाला है। तो रावण डरता था क्योंकि उसको पता था कि राम तो सब शक्तिशाली है, अब ये राम के साथ मैं झगड़ा कैसे करूं। तो उसको याद आया कि भी मेरे दादा के दादा बड़े दादा बलि महाराज भी राक्षस थे, उनकी भी कथा अच्छी है, कभी मौका आएगा ना तो हम करेंगे। तो बलि महाराज की याद आ गई उसको, तो बलि महाराज सुतल प्लेनेट में है अभी भी है, और उनका वॉचमैन वामन देव है, भगवान उनका वॉचमैन। तो रावण को ऐसा हुआ कि मैं जाऊं दादा के पास, क्योंकि दादा को पोते बड़े प्रिय होते, हमारे को हमारे पुत्रों से इतना प्रेम नहीं होता है, मगर जो पुत्र के पुत्र होते हैं ना उसे बहुत प्रेम होता है, तो पोतों को भी दादा से बड़ा प्रेम होता है। तो इसको रावण को लगा कि मैं जाऊं तो जरूर मेरे दादा मेरे को हेल्प करेंगे और उनकी हेल्प से मैं कृष्ण को कहाँ हरा दूंगा, राम को भगा दूंगा बोलना। तो रावण ने सोचा कि जाऊं मैं दादा के पास। रावण तो गया उस सुतल प्लेनेट में गया तो वहां बलि महाराज तो अंदर थे, ये बाहर तो वामन देव थे, ये चेतन के जैसे, भरत की जय जय भरत की जय, नंबर वन भरत आ गया, टू कहां थ्री कहां, तेरे को मारेंगे भरत, दूसरे भरतों को नहीं लाएगा था। तो ये चेतन के जैसा वामन देव खड़ा था वहां, तो वामन देव ने देखा ये रावण यहाँ क्यों आया, इसको सीधा हरण करके संतोष नहीं हुआ, ये और मेरा हरण करने के लिए आया है। तो वामन देव को पूछे हुआ देखा वहां खड़ा, तो बोले हे हे, उसको पता नहीं कि भगवान है, बोले हे बच्चे, चेतन बेचारा घबरा गया तो वामन देव भी घबरा गए, तो बोले क्या करूं आपकी सेवा क्या करूं, हमारे दादा को मिलने को जाने के, कौन दादा, बोले तुम्हारे कौन दादा, बोले बलि महाराज, हाँ बोले वो आराम कर रहे हैं अभी नहीं मिल सकते, नहीं मैं उनका पोता हूँ बड़ा पोता, मुझे जाना है। अच्छा बोले जाने तो क्या करें, वामन देव ने अंदर जाने दिए, अंदर गए तो बलि महाराज से बिल्कुल प्रणाम कर दिया। बलि महाराज ने पूछा क्या बात, पोते साहब कैसे आ गए हैं, तो बोले दादा कुछ भी करें मगर मुझे कुछ सहाय की जरूरत है आपकी। अरे बोले क्या गड़बड़ी क्या होगी, बोले मुझे राम के साथ झगड़ा करना है और कैसे वैसे करके सीता को रख लेना है। तो बलि महाराज ने कहा ये बात तो अच्छी नहीं है बेटा, भगवान के साथ कभी झगड़ा करो तो उसमें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि भगवान तो बहुत शक्तिमान है। नहीं नहीं दादा बोले आपकी सब बात झूठ तो नहीं, बोले मगर तेरे को सहाय करता हूँ मैं, मगर तू चल मेरे साथ। तो बलि महाराज को लेकर साथ गए तो देखा इधर उधर, क्या मदद करूँ, बोले क्या सहाय करूँ तेरे को, भगवान कुछ न कुछ, बलि महाराज दादा कुछ न कुछ करो, ये राम को मुझे भगाना है वहां से लंका में। तो बोले चल मैं गांव के बाहर ले जाता हूँ तेरे को, वहां कुछ न कुछ हेल्प कर देता हूँ। तो वो ले गए तो बड़ा सोने का हिमालय के जैसा पर्वत था, है ना, सोने का पर्वत। देखा चेतन तूने कभी देखा है सोने का पर्वत, तू तो वहीं बैठ जाएगा, कैसे, हाँ सोना जितना चाहे उतना ले सकते हो, देखा है तूने सोना नहीं आएगा। तो सोने का पर्वत था हिमालय से बड़ा, तो वो तो देखता ही रह गया है करके रह गया। तो तो फिर भाई क्या बोले दादा, तो हम बहुत पैसे वाले हैं, ये इतना पर्वत मेरे पास आ जाए तो मैं तो दो राम को भगा दूं, एक नहीं। तो बोले देख ये सारा तेरा है, तेरे को जो ले जाना है वो ले जा, मगर राम ये रावण क्या ले सकता है 20 किलो, ये हम एयर में जाते हैं तो कितना ले जाते, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी 20 किलो से ज्यादा नहीं है, बहुत 20 ले लो और तो कोई एयर फ्रेट दे लो, मुझे कितना ज्यादा से ज्यादा। वो बेचारे ने थोड़ा बहुत लिया, दादा बोले ये तो बहुत भारी है। अरे तो बोले सोना तो भारी ही होता है, वो हल्का होता है, तो थोड़ा बहुत लिया बेचारे। अब बोलिए मैं कैसे ले जाऊं इतना सोना, तो बोले तू अब तेरा काम है ले जाने का, मैंने तेरे को सहाय कर दिए, तेरे को जितना चाहिए उतना सोना तू ले जा और राम को जो करना है वो कर ले। तो वो तो उठा नहीं सका, दादा बोले ये तो बड़ी मुश्किल बात, आप कुछ करें मुझे सहाय। अरे बोले मैं तो सहाय कर रहा हूँ, तेरे को सोने का पर्वत दे दिया है और क्या दूँ। हाँ ये बात बराबर है, मैं देखता हूँ कुछ न कुछ व्यवस्था करता हूँ। तो उतना सोच रहा था रावण, तो बलि महाराज ने कहा देख ऐसी मूर्खाई मत कर, तू मूर्ख है, ये जो सोने का पर्वत है ना, ये हिमालय से भी बड़ा जो सोने का पर्वत है, ये हिरण्यक्ष का नाम सुना है बोले तूने, बहुत बड़ा डीमन था, बड़ा राक्षस, ये हिरण्यकशिपु का बड़ा भाई, उसका ये ईयर रिंग है, आपको पता चला, वो इतना सोने का बड़ा पर्वत, ये हिरण्यक्ष का ईयर रिंग, ये कान में जो डालते हैं ना, तेरे कान में नहीं है चेतन, क्यों डाल ले आज नहीं, तो ईयर रिंग कितना छोटा होता है, तो ये पर्वत जिसका ईयर रिंग है उसका शरीर कितना बड़ा होगा, ये कल्पना कर ले। बोली ये तेरा बड़ा दादा था, राक्षस था वो भी, और कितना बड़ा शरीर था उसका कि जिसका ये रिंग यहां तू देख रहा है, तो तू कल्पना करके इसका शरीर कितना बड़ा होगा। तो उसको भी विष्णु ने हरा दिया था, ये इतना बड़ा शरीर होते हुए भी उसको राम ने हरा दिया था, तो तू क्यों मूर्ख बन रहा है, बोले तेरे को नाश आने वाला है। नहीं नहीं दादा बोले तुम्हारी सब बातें अलग है, मैं तो युद्ध करूंगा, क्योंकि उसको बोलते हैं संस्कृत में कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काल जब आता है ना, जब हमारा विनाश होता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है, बुद्धि हमारी घूम जाती है, बुद्धि काम नहीं करती है, वैसे रावण की भी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। मगर पॉइंट ये है कि हिरण्यक्ष इतना बड़ा था कि जिसका ये रिंग हिमालय पर्वत से भी ज्यादा बड़ा था। देखा है आपने हिमालय पर्वत, भरत तूने देखा है हिमालय, तो इंडिया जाओ है, और कहाँ जाएगा, हरिद्वार, हरिद्वार क्या नाम, हरिद्वार और ऋषिकेश, ऋषिकेश बोल, हाँ और बद्रीनारायण, हाँ जब तेरे को हिमालय दिखेगा ओके जरूर जाना, और कब जाता है मुझे लिखना और टिकट भेज देना, तो हम बद्रीनारायण आ जाएंगे ओके। वो बोलता है नहीं टिकट की बात मत करो, आना है तो आओ कथा सुनेंगे। भरत बहुत कंजूस आदमी है भरत। तो ये ऐसी बात है, देखिए उसका ये छोटा भाई हिरण्यकशिपु है, अब इसका कैसे विश्वास किया जाए, एक ही विश्वास इसका हो सकता है कि ये जय और विजय कि ये दोनों रूप हैं। तो वो भक्त थे दोनों भी, और उनको शाप था कि आप राक्षस होंगे और विष्णु का ही ध्यान करेंगे, राम का ही ध्यान करेंगे, और वैसे ही ये लोग करते हैं कि विष्णु के साथ झगड़ा करते हैं मगर रात दिन ये ध्यान कर रहे हैं। ये हिरण्यकशिपु को सोना बड़ा पसंद था, गोल्ड यू नो वेल्थ, और कशिपु यानी सॉफ्ट बेड, नहीं हमारा बेड बिल्कुल सॉफ्ट होता है, वो बेड इसको बड़ा पसंद। तो जब तो एक हिरण्यकशिपु था, वो जमाने में एक ही हिरण्यकशिपु था, अब तो हम सब हिरण्यकशिपु हैं, क्योंकि हमारे को गोल्ड भी पसंद है और हमारे को बेड भी पसंद है। नहीं भरत तू सोता है क्या, नहीं काहे पर सोता है, बेड पर बड़ा बेड है ना, तू भी हिरण्यकशिपु। तो ये हम हिरण्यकशिपु ना हो इसकी कुछ केयर लेना है, और इसलिए ये मंदिर है, ये कृष्ण कथा है, तो इसमें हमें पता चल जाए कि गोल्ड, ये वेल्थ और बेड, ये दो ही चीजें दुनिया में नहीं है, ये चीजों से कोई फायदा नहीं है। इसलिए हमें मिले तो ठीक है, ना मिले तो ठीक है, जमीन तो है, झाड़ है ऊपर, और फिजी की क्लाइमेट बड़ी अच्छी है, यहाँ कोई कवर की जरूरत नहीं है। तो ये इसके बारे में हमें बहुत केयर रखनी है। इसको हिरण्यकशिपु कहते हैं। अब ये ऐसा हिरण्यकशिपु बोल रहा है, हम देखेंगे क्या बोलता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हिरण्यकशिपुः उवाच, कल्पान्ते कालसृष्टेन योन्धेन तमसा वृतम् अभिव्यनक् जगदिदं स्वयं ज्योतिः स्वरोचिषा आत्मना त्रिवृता चेदं सृजति अवति लुम्पति रजः सत्व तमोधाम्ने पराय महते नमः। श्री हिरण्यकशिपु उवाच, श्री हिरण्यकशिपु उवाच, कल्पान्ते कालसृष्टेन योन्धेन तमसा वृतम् अभिव्यनक् जगदिदं स्वयं ज्योतिः स्वरोचिषा कल्पान्ते कालसृष्टेन योन्धेन तमसा वृतम् अभिव्यनक् जगदिदं स्वयं ज्योति स्वरोचिषा। एक ही वर्ष बोलेंगे हम, वही रिपीट करें। श्री हिरण्यकशिपु उवाच, कल्पान्ते कालसृष्टेन योन्धेन तमसा वृतम् अभिव्यनक् जगदिदं स्वयं ज्योतिस्वरोचिषा। श्री हिरण्यकशिपु उवाच, कल्पान्ते कालसृष्टेन योन्धेन तमसा वृतम् अभिव्यनक् जगदिदं स्वयं ज्योतिः स्वरोचिषा। श्री हिरण्यकशिपु उवाच, कल्पान्ते कालसृष्टेन योन्धेन तमसा वृतम् अभिव्यनक् जगदिदं स्वयं ज्योतिः स्वरोचिषा। श्री हिरण्यकशिपु उवाच, कल्पान्ते कालसृष्टेन योन्धेन तमसा वृतम् अभिव्यनजगदिदं स्वयं ज्योतिः स्वरोचिषा। हिरण्यकशिपु उवाच, कल्पान्ते कालसृष्टेन योन्धेन तमसा वृतम् अभिव्यनजगदिदं स्वयं ज्योतिः स्वरोचिषा। श्रीरण्यकशिपु उवाच, कल्पान्ते कालसृष्टेन योन्धेन तमसा वृतम्
विनर्जितम् स्वयं ज्योतिः चरोचिषः.
माताजी प्लीज.
श्रीहिरण्यकशिपुरुवाच कल्पान्ते कालसृष्टेन योन्देन तमसाहितम् जगदिदम् ज्योतिश्वरोचिषः. श्रीहिरण्यकशिपुरुवाच
कल्पान्ते श्री हिरण्यकशिपुरुवाच हिरण्यकशिपु से कल्पन्ते अंते इज एंड यू नो अंते आखिर में कल्प कल्पन्ते एट द एंड ऑफ एवरी डे ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा एट द एंड ऑफ एवरी डे ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा. ये कल्प ब्रह्मा का दिन है याद रखिए. फिर हम सोचे ब्रह्मा का दिन कैसे होता है. कल्प कल्प सृष्टि है ना I'm sorry. Kala Srishtena, created by the time factor. Yaha, he who, Andhena, by dense darkness, Tamasa, by ignorance, Avritam, covered, Abhivina, manifested, Jagat, cosmic manifestation, Idam, this, स्वयं ज्योति ही सेल्फ एफल्जेंट स्वरोचिषा बाय हिज बॉडीली रेज आत्मना बाय हिमसेल्फ त्रिवृता कंडक्टेड बाय थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर च ऑल्सो इदम दिस मटेरियल वर्ल्ड सृजति क्रिएट्स Avati maintains, Lumpati annihilates, Rajaha of the mode of passion, Sattva the mode of goodness, Tamaha the mode of ignorance, Dhamne unto the Supreme Lord, Paraya unto the Supreme, Mahate unto the Great, Namaha my respectful obeisances. Translation by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki. Please repeat. Let me offer my respectful obeisances unto the Supreme Lord within this universe. At the end of each day of his life, the universe is fully covered with dense darkness by the influence of time. And then again, during his next day, that self-effulgence rod, by his own effulgence, manifests, maintains, and destroys the entire cosmic manifestation through the material energy, which is invested with the three modes of material nature. He, Lord Brahma, is the shelter of those modes of nature, Sattva Guna, Rajo Guna, and Tamo Guna. Purport by Srila Prabhupada, the words Abhivinak Jagadidam refer to He who creates this cosmic manifestation. The original creator is the Supreme Lord, Krishna, Janmadiyasyeta. ये पहला वर्ष है पहली वर्ष है श्रीमद् भागवतम में से. हमें ये पक्का कर लेना चाहिए. ब्रह्मचारियों की जय. रामचंद्र की जय. रामचंद्र दास की नहीं जय. कौन पहली वर्ष बोलो. पापा बराबर कर लीजिए, हाँ सुनिए बहुत अच्छी वर्ड से पहले।
सूर्य तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गोमृषा नाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुवकं सत्यं परं धीमहि।
एक वर्ष, एक ही वर्ष कर लीजिए, सारी जिंदगी यही बोलते रहिए, दूसरा कुछ मत करें, खाना पीना मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, है ना। इसलिए भागवत की हम पूजा करते हैं, इसको शास्त्र डेटी बोलते हैं इंग्लिश में, शास्त्र देवता, है ना, स्क्रिप्चर डेटी। ये कृष्ण में और भागवत में कोई फर्क नहीं है। वेरी नाइस, कभी समझाएंगे। पहली वर्ष बड़ी अच्छी है, इसका रेफरेंस यहाँ प्रभुपाद जी दे रहे हैं। द ओरिजिनल क्रिएटर इज द सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ कृष्णा जन्मादियता। लॉर्ड ब्रह्मा इज द सेकेंडरी क्रिएटर, लॉर्ड ब्रह्मा इज द सेकेंडरी क्रिएटर। पहले लॉर्ड ने क्रिएट किया, करके रखा था, और ब्रह्मा तो इंस्ट्रूमेंट हो गया। तो नहीं हमारे इसमें यहाँ बैलगाड़ी होगी, बैलगाड़ी है नहीं, बैलगाड़ी है भाई, बेबी क्या नाम क्या है ये बेबी का, ये ब्लू ब्लू, गोपी, जय गोपी की जय। तेरा नाम क्या है बेबी बड़ी का, हाँ शिल्पा, दीपा, ओ वेरी नाइस नेम दीपा, बड़ा अच्छा नाम है तेरा, दे दे हमारे को, दे दे नाम, देगी नहीं, आज सो जाएगी तो तेरा नाम हम ले जाएंगे। ओके, और उसका नाम क्या, हाँ वो बहुत अच्छा है, तेरा नाम तो दोनों से भी अच्छा है, तू दे दे, चल देती है नहीं, नहीं। ये देखिए, तो वो ब्रह्मा, ब्रह्मा जो है ना, वो है ना बैलगाड़ी में, बैलगाड़ी में बैल खींचते हैं बैल गाड़ी, और बीच में कुत्ता आ जाता है, तो कुत्ता बड़ा सीधा चलता है ऐसे, फिर कुत्ते को जाए कुत्ता कैसे है, बोलो मत बोले मेरे, अरे क्या भाई क्या बात, मैं गाड़ी खींच रहा हूँ। वो गाड़ी खींचता नहीं है, मगर मानता है वो मैं खींचा, हम वो कुत्ते की देखते कर दे कुछ नहीं। और मैं कर रहा हूँ। बात ऐसी मूर्ख है ना, मगर हम डीलक्स मूर्ख नहीं है, मूर्ख। लॉर्ड ब्रह्मा इज द सेकेंडरी क्रिएटर, व्हेन लॉर्ड ब्रह्मा इज एम्पावर्ड by Lord Krishna as the engineer to create the phenomenal world, he becomes the supremely powerful feature within this universe. ये बहुत अच्छी बात है कि लॉर्ड की कृपा हो ना तो हम महान हो जाएं उनके जैसे, उनकी कृपा ना हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। ब्रह्मा को जब उन्होंने पावर दिया कि भाई तुम ये काम करो, तो वो ब्रह्मा कर सका, नहीं तो ब्रह्मा में कोई शक्ति नहीं है। वैसे हमारे में भी कोई काम करने की शक्ति नहीं है, हमारे में एक ही शक्ति है कि हम इसका नाम ले लें, चार बजे आकर हम नाच लें यहाँ, इतना ही हम कर सकते हैं, इसके सिवा हमारे में कोई शक्ति नहीं है। दूसरा जो होता है वो उसकी कृपा से होता है, और वो हम भूल जाते हैं, उसकी कृपा को जब हम भूल जाते हैं तो वो फटका मारता है कि क्यों भूला मेरे को, और फिर भी जब हम मानते नहीं हैं तो वो खुद की माया को हमारे को सौंप देता है कि भाई इसको देख ले जरा, और फिर माया इधर से मारे, मॉर्निंग में इधर से मारे, और मुंह लाल हो जाए तो लोगों को ऐसा लगे कितना सुखी आदमी है, उसको पता नहीं कि तो झापड़ पड़ी है। ये माया का मार, वो बचता नहीं है, दिखता नहीं है, और जोर से मार दिए, क्योंकि वो कृष्ण का इंस्ट्रूमेंट है। तो वो ना हो, वो माया का मार जोर न लगे, इसलिए हमें कृष्ण की तरफ आना चाहिए, और कृष्ण को हम आराधना करें राम की के कृष्ण की, तो वो खुद ही हमारे को शक्ति दे देता है, और सब जितना होता है उससे ज्यादा अच्छा हो जाता है। वेरी गुड। द टोटल मटेरियल एनर्जी इज क्रिएटेड बाय कृष्णा एंड लेटर टेकिंग एडवांटेज ऑफ ऑल दैट हैज नेसेसरली बीन क्रिएटेड, लॉर्ड ब्रह्मा इंजीनियर्स द एंटायर फिनोमिनल यूनिवर्स। एट द एंड ऑफ द लॉर्ड ब्रह्मास डे एवरीथिंग अप टू स्वर्गलोका इज इनंडेटेड विद वॉटर, एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन देयर इज डार्कनेस इन द यूनिवर्स, ब्रह्मा अगेन brings the phenomenal manifestation into existence. Therefore, he is described here as he whom one manifests this universe. Tri guna vrinoti. Lord Brahma takes advantage of three modes of material nature. Prakriti, material nature, is described as tri vrita, the source of the three material modes. Sri Madhvacharya comments in this connection that tri vrita means prakritya. Thus, Lord Krishna is the original creator and Lord Brahma is the original engineer. Ye samajhne ki baat hai. Om Adnyanatimirandasya Jnananjanushlagaya Chakshurunmilitam yena Tasmay Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam yena Bhutale Swayam Rupakmiyam Dadati Subhadantikam Vandeham Guruho Dvipada Kamalam Shri Guruvan Vaishnavamsha Shri Rupam Sagradatam Tam Sajivam Sadvaitam Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Vanalildam Shafam Vitamsha. Ab hum Krishna ki baat aaye. You know, Krishna ka bahut prem se obeisance kar lo. He Krishna Karuna Sindho Deena Bandho Kate Gope Radha Kanta. फिर दसवें अध्याय में से भगवद गीता में से बारहवां श्लोक परम ब्रह्मा परम धाम पवित्रम परम भगवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम. दो लाइन में कृष्ण के दस कैरेक्टरिस्टिक दिए और कोई कोई सेक्ट में ऐसा वर्णन नहीं है. भूल कर भी साईं बाबा के पीछे मत भागिए और कोई देवी देवता के पीछे नहीं, वो सब नौकर हैं. कल ही हमारे जगन्नाथ प्रभु ने कहा, अभी प्रभुपाद आए थे पहले इनके घर में और प्रभुपाद बैठे थे, उनका कोई डिसाइपल भी था, तो डिसाइपल ने प्रभुपाद को कहा कि ये जगन्नाथ के यहाँ ऑल्टर है और वो ऑल्टर में कृष्णा और गणेश और शंकर और सभी है. तो प्रभुपाद ने इनको बड़ी अच्छी बात कही कि बोले मालिक और नौकर साथ नहीं खाते. ये प्रभुपाद, देखिए ये तरीका है प्रभुपाद का. आपको जो भी समझना हो वो प्रभुपाद की किताबों के पास आइए. ये अभी भी किताबों में है प्रभुपाद और बिल्कुल यही भाषा से वो समझाते हैं, बिल्कुल इजी. आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी. थोड़ा अंग्रेजी आता हो ना तो अंग्रेजी भी ज़्यादा आ जाएगा आपको. प्लीज़ ऐसा मत सोचिए कि अंग्रेजी नहीं आता है. तो हिंदी में किताबें हैं, गुजराती में हैं. प्लीज़ ज़रूर कुछ ना कुछ पढ़िए. एक बार हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे हैं बुक्स, प्रभुपाद की बुक्स, ये बात बड़ी याद रखने की दीजिए. तो हमने एक हॉल में गए, वो हमारे नवरात्रि का प्रोग्राम नहीं, अपने नवरात्रि का प्रोग्राम था. तो नवरात्रि का प्रोग्राम था ये दशहरे के वक्त, तो बहुत सारे लोग वहाँ आए. तो हमने कोई 1000 बुक, एक आदमी ने हमारे को डोनेशन दे दिया था कि भाई 1000 बुक आप डिस्ट्रीब्यूट करके आएंगे. तो हम वो बड़ा ट्रक भर के और ले गए और हम वो अलग अलग सब किताबें थी वो छोटी छोटी, है ना, किंग ऑफ नॉलेज और कमिंग बैक और एट्सेट्रा. तो वो सब हमने लगा के रखी वो ट्रक पर और हमारा डीओडी वो एक 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 वो जो आता था उसको. फिर एक भाई आई बेचारी, उसने सारी एक एक बुक ली, एक कमिंग बैक, एक ये ऐसे 6-7 बुक उसने उठा ली. मैंने कहा माता, वो बिल्कुल बूढ़ी दिखती थी और मुझे ऐसा लगा कि उसको इंग्लिश कुछ आता नहीं होगा. मैंने कहा माता तूने ये 6-7 बुक ली है मगर तेरे को इंग्लिश आता है? नहीं, बोले मुझे नहीं आता. तो मैंने कहा ये बुक क्या करेगी? बोले आपको पता नहीं है, ये मैंने इसलिए ली है कि मैं इसको ऐसे ही देखूंगी वो बच्चों के सामने, क्योंकि घर में बच्चे मानते नहीं है भगवान को. तो मैं ये बुक को पढ़ूंगी तो नहीं, पढ़ नहीं सकूंगी, मगर ये ऐसे ही मैं देखूंगी उसको. तो बच्चों को फिर आगे ख्याल आएगा कि हमारी दादी माँ कुछ पढ़ती थी तो ये लोग पढ़ेंगे वो. आप समझे? कि उसको कुछ आता नहीं था, मगर वो बच्चों को कह नहीं सकती थी कि ये किताबें आप पढ़ो, तो बोले मैं ऐसे ही पढ़ूंगी, तो बच्चों को ख्याल रहेगा कि दादी माँ कुछ पढ़ती थी, तो मेरे मरने के बाद वो देखेंगे भाई ये बुक में क्या पढ़ती थी वो क्योंकि बच्चों को भी तो मुसीबत तो आने ही वाली, तो हम करेंगे तो बच्चों का भला होगा, हम नहीं करेंगे तो कभी नहीं होगा। हमारी बात क्या है कि हम तो बीड़ी पूते हैं, पीते हैं, फू 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 कर तू मत पी, फू 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 मत। अरे वो बोलता है ये तो रात दिन फू फू करता है पर मुझे ना बोलता है, तो वो भी आपके सामने भी कुछ ना बोले, जरा कॉर्नर में जाके देखे कि भाई ये बाप क्या करता है। तो ये फू फू करने के बजाय ये फू फू करिए। तो आपको ना भी समझे तो कोई हर्ज नहीं, मगर पुलटम ऐसे ही बोलता है। ये बड़ी बात है, ये श्रीमद् भागवतम में बहुत अच्छा श्लोक है। हाँ यस, हमें क्या करना चाहिए, नहीं तो हमारे को कोई अधिकार नहीं है सोसाइटी में रहने का। हाँ, गुरुर न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, गुरुर न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्। हरे कृष्ण। गुरुर न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, दैवम न तत्स्यात् पतिश्च न सस्यात्, न मोचयेदिह समुपेत मृत्युम्। एक कंडीशन लास्ट लाइन में दी है कि न मोचयेदिह समुपेत मृत्युम्। न मीन्स नॉट, नहीं, मोचयेत मीन्स डिलीवर, समुपेत मृत्युम मीन्स दी फ्रॉम द विशियस सर्कल ऑफ बर्थ और डेथ। ये जो जन्म मृत्यु के चक्कर में हम फंस गए हैं, इसमें से हम हमारे डिपेंडेंट्स को छुड़ा नहीं सके तो उसको गुरु होने का अधिकार नहीं। गुरु न सस्यात् स्वजनों न सस्यात्, हम किसके रिलेटिव भी तो है, रिश्तेदार भी तो है, हम किसी के भाई हैं, किसी की बहन है, किसी की माँ है, किसी का अंकल है, किसी की एंट है, आंट है, ये रिश्तेदारी है ना। तो रिश्तेदारी हो तो हमारे पर जो रिश्तेदार डिपेंड करते हैं उनको भी हमने जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाना है, नहीं तो हमें रिश्तेदार होने का अधिकार नहीं है, गुरु होने का अधिकार नहीं है, स्वजन होने का अधिकार नहीं है, पिता न सस्यात् बाप होने का भी अधिकार नहीं है, जननी न सस्यात् माँ होने का भी अधिकार नहीं है, फिर दैवम न सस्यात् देमी गॉड, ये देव होने का भी अधिकार नहीं है, और पति न सस्यात् और पति होने का भी अधिकार नहीं है। ये इतना होना है हमें तो हमें जो हमारे डिपेंडेंट्स हैं उनको जन्म मृत्यु के चक्कर में से छुड़ा देना, और वो कैसे छुड़ाए, जब हम खुद छुड़े तो, नहीं तो कैसे छुड़ाओगे आप ही नहीं छूटते तो उनको कैसे छुड़ाओगे। तो हमारा ये कर्तव्य है पहले कि पहले हम भगवद गीता की तरफ आए, पहले हम मंदिर में आए रोज, पहले हम ये करें तो हमारे जो डिपेंडेंट्स हैं, पत्नी हैं, पुत्र हैं और रिश्तेदार हैं, उनको हम छुड़ा सके। नहीं तो आपने पति नहीं होना है, आपने पिता नहीं होना है, आपने माता नहीं होना है, गुरु नहीं होना है और रिश्तेदार भी नहीं होना है, सब छोड़ के। और वो हमारा कल कहा था हमने, वो कौन सा है, सुइसाइड क्लिप, सिंगापुर चले जाइए, यहाँ से हम गाड़ी में भर के ट्रक में भर के आपको सुइसाइड क्लिप पर ले जाएंगे, वहीं फिर डुबकी मार लेंगे, क्या बात है, आपके रेस्टोरेंट भी साथ ले जाना। ये बात है देखिए, ये शिक्षा है, ये शिक्षा है कि प्लीज इतना करिए। और इसके बाद एक 5 मिनट हम लेंगे, उसमें हम आपको ब्रह्मा के दिन का ख्याल दे देंगे, ब्रह्मा का दिन कितना बड़ा होता है। देखिए हमारी हमारा जो जीवन है 50, 60, 70, 80 साल का, वो कुछ नहीं है, बहुत ही कम है, और कितना कम है ये ब्रह्मा का दिन जब हम सोचते हैं ना तो हमें ये पता चलता है। ब्रह्मा के दिन को कल्प कहते हैं, ये होल मटेरियल मैनिफेस्टेशन कल्प में डिवाइडेड है ये ब्रह्मा के दिन में। और हर एक दिन में ब्रह्मा का दिन जब पूरा होता है और रात जब आती है तो पार्शल एनिहिलेशन होता है। पार्शल यानी क्या कहूँ हिंदी में, पार्शल एनिहिलेशन, एनिहिलेशन यानी प्रलय, पार्शल यानी व्हाट इज इट, क्या कहें रामचंद्र, पार्शल को हिंदी में क्या कहते हैं, एक विभाग का, सारा नहीं, पूरा नहीं, पूरा प्रलय नहीं होता है, मगर थोड़ा प्रलय होता है। ये जो जो मटेरियल प्लैनेट्स है ना, इनका प्रलय होता है ब्रह्मा का दिन जब पूरा होता है। तो घबराए मत, अभी दिन को देर है, अभी नहीं प्रलय होगा। और पहले प्रलय हुआ तो फीजी पहले जाएगा, मैं वो गारंटी देता क्योंकि आपको पता है वो पहले ये हमारे यहाँ ये पृथ्वी है, ये जमीन है ना, तो जब प्रलय होने का टाइम होता है तो पानी का प्रकोप होता है, आपके आजू बाजू पानी बहुत है। पहले कृष्ण फीजी को ले लेगा, बड़ा अच्छा है बोले मेरे को रहने के लिए तो पहले फीजी का तरफ जाएगा, हम बाद में जाएंगे, इसलिए हम फीजी नहीं आएंगे तो जब पानी हो जाता है ना, तो ये जो अर्थ का बॉल है ये पानी का बॉल हो जाता है, ये वाटरी बॉल हो जाता है, ये सब पानी पानी हो जाता है बिल्कुल। और पानी पानी हो जाए तो जमीन सब डूब जाती है, और उस वक्त हमारे को बहुत कष्ट होता है, क्योंकि मरना नहीं होता है, फिर भी मरना पड़ता है। और फिर पानी का जब वाटरी बॉल हो जाता है तो उसके बाद फायरी बॉल हो जाता है, ये वाटर में से फायर निकल आती है और वो फायरी बॉल हो जाता है सब। तो ये जमीन नहीं दिखती है, पानी नहीं दिखता है, और खाली अग्नि अग्नि दिखती है, वो शेषनाग के मुंह से अग्नि निकलती है और ये सारा जल के भस्म हो जाता है। फिर वो फायरी बॉल एयरी बॉल हो जाता है, यानी हवा, वो सब हवा में उसकी तब्दीली हो जाती है, और वो एयरी बॉल फिर ईथर, वो ईथर का बॉल हो जाता है, ये आकाश बिल्कुल अदृश्य हो जाता है। और ये फिर ये देखिए, यानी अर्थ के बॉल में से वाटरी बॉल हो जाता है, वाटरी बॉल में से फायरी बॉल, फायरी बॉल में से एयरी बॉल, एयरी बॉल में से ईथरी बॉल, और फिर एयरी बॉल और फिर हम सब जो जीव हैं, जो मरते हैं, उनका उद्धार नहीं होता है, वो महाविष्णु के पेट में जाकर बैठ सो जाते हैं, और वहां सोते सोते भी सपना देखते रहते हैं, अभी दूसरा क्रिएशन होगा, फिर मैं शादी करूंगा, फिर मैं पैसे कमाऊंगा, बड़ा मकान बनवाऊंगा, ये सब वहां भी हमारे विचार चलते रहते जब तक दूसरा मैनिफेस्टेशन। फिर उतनी देर में ब्रह्मा की रात पूरी हो जाती है, तो ब्रह्मा की रात पूरी हो तो और क्रिएशन होता है, और क्रिएशन हो तो ये जीव जो पड़े हैं महाविष्णु के पेट में वो फिर धीरे धीरे निकलते हैं। भूतवा भूतवा प्रलीयते, इसको ही कहते हैं भगवद्गीता में 8वें अध्याय में बड़ा अच्छा वर्णन दिया है, टाइम नहीं है, नहीं तो बहुत बहुत अच्छा वर्णन है। भूतवा भूतवा प्रलीयते, अगेन एंड अगेन एंड अगेन इट इज डिस्ट्रक्टेड, एंड अगेन अगेन इट इज क्रिएटेड, ये रात दिन ऐसे ही चलता रहता है। और हम आते हैं, फिर शादियाँ करते हैं, फिर पैसे जुटाते हैं, फिर मरते हैं, फिर आते हैं, फिर मरते हैं, ये चक्कर में से हम छूट नहीं सकते, और जब तक छूट नहीं सकते तब तक हमारा कोई उद्धार नहीं है, ये जन्म में करें या कोई अगले जन्म में करें, मगर ये करना है ज़रूर। तो क्यों करें, क्यों हम ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि, क्यों जन्म में बढ़े, क्यों मरने में बढ़े, और क्यों बूढ़े हो जाएं, और क्यों डिसीज हो जाए। जो सियाना आदमी होता है वो जल्दी ये काम कर लेता है। तो इसके बाद आप समझ लीजिए कि ब्रह्मा का दिन कितना बड़ा होता है। ब्रह्मा के दिन में उसका वर्णन श्रीमद् भगवद्गीता में किया है, सुनिए आप वर्ड्स भगवद्गीता में। 5 मिनट हैं ना अभी, 5 मिनट्स, 5 मिनट में पूरा कर देंगे। सहस्रयुग पर्यंतम अहर्यद् ब्रह्मणो विदुः, सहस्रयुग पर्यंतम अहर्यद् ब्रह्मणो विदुः, रात्रिम युव सहस्रंतम देहो रात्र विदो जनाः। वेरी नाइस वर्ड। सहस्रयुग पर्यंतम, युग हमारे इसमें 4 युग हैं, सत्ययुग, फिर त्रेतायुग, द्वापर और कलियुग, और ये 4 युग का एक साइकिल है। ये 4 युग एक के बाद एक आते हैं, पहले सत्ययुग आता है, फिर त्रेता, फिर द्वापर और फिर कलियुग, और द्वापर के आखिर में हर एक चक्कर में कृष्ण आते हैं। द्वापर का जब अंत होता है और कली की शुरुआत होती है तो जब कृष्ण का अवतार होता है, ये हर एक साइकिल में। अब देखिए कि ये 4 जो युग है ना, इनका रेशियो है, इनके टाइम का रेशियो है। ये कैसे, कलयुग लो, कलयुग, फिर द्वापर युग, फिर त्रेता और फिर सत्य, ऐसे सीक्वेंस है इसका। तो कलयुग फर्ज करो कि कलयुग एक वर्ष है, तो द्वापर दो वर्ष होगा, फिर त्रेता तीन वर्ष होंगे और सत्य चार वर्ष, एक दो तीन चार, ये उसका रेशियो है। अब कलयुग का ड्यूरेशन 432,000 है, 432,000, तो कलयुग से द्वापर डबल, एक दो नहीं, दो तो 432 का डबल 864,000, तो ये कलयुग 432,000 है, द्वापर 864,000, फिर तीन, कलयुग से तीन गुना त्रेता, तो 1296 यानी 1296,000, और चार गुना सत्य तो 1728, मेरे ख्याल 1728, चार गुना 432, 416 और 32, हाँ 1728,000। अब ये जो नाप है इसका, इसको हम टोटल करें तो इसकी टोटल याद रखने जैसी है, ये चार युग की टोटल, ये यानी कलयुग के 432,000, फिर द्वापर के 864,000, फिर 1296,000 इसके त्रेता के, और सत्ययुग के 1728,000। इसका हम टोटल करें तो ये 4,322,000 होता है, 4,320,000। अब 4,320,000 इतना इसका टोटल होता है, और ये एक साइकिल हुआ, ये एक साइकिल हुआ, एक ही साइकिल, सत्य फिर दूसरा क्या है त्रेता, फिर द्वापर और कलि, इसका एक साइकिल हुआ। ऐसे सहस्र युग पर्यंतम, ऐसे 1000 साइकिल होते हैं ब्रह्मा के दिन में। देखिए आप सोचिए, चार युग साइकिल का टोटल 4,322,000 होता है, और ऐसे 1000 साइकिल ब्रह्मा के 12 घंटे में होते हैं। हमारा जीवन है क्या, बहुत ज्यादा से ज्यादा हो तो हम 100 साल नहीं है, मुमकिन नहीं है 100 साल, मगर बहुत हमने खींचा तो 100 साल के होंगे, इसके सिवा हम ज्यादा नहीं हो सकते। हमारा जीवन ये इटर्निटी के ब्रह्मांड में कुछ नहीं है, और उसमें हम कितना करते हैं, ये जो हमारा 60-70 वर्ष का जीवन है, इसमें 30 साल आधा जीवन तो हम सोते हैं, नहीं 12 घंटे तो कम से कम, लंबा हो गया वो 12 घंटे खत्म कभी जगेगा नहीं, क्यों, वो नींद चाहिए। और फिर दिमाग आपको कहता है, मन कहता है, तू तो बड़ा काम का आदमी है, तेरे को तो जरा आराम करना ही चाहिए, तो जरा 2 घंटा और खींच लेता है, हाँ बराबर है, बोले मुझे तो आराम करना ही चाहिए, फिर काम करना है तो ज्यादा दूर, तो हमारी आधी जिंदगी नींद में जाती है। फिर हम 10 साल तो खाते रहते हैं, कितना, रोज 3 बार खाते, और फिर वो पकाना है, ये लाना है, वो लाना है, खाना वैसे तो होता नहीं है, चावल आए, दाल आए, ये हो वो हो, मकान चाहिए, ये चाहिए, ये सब व्यवस्था में और टाइम निकल जाता है, बिजनेस करना है उसमें टाइम निकल जाता है, शादियाँ करनी है उसमें टाइम निकल जाता है, बच्चे बड़े करने हैं उसमें टाइम निकल जाता है, हमारे पास टाइम कहाँ है। जब तक हम नहीं सोचे तो हमारे पास कोई टाइम नहीं है, और ब्रह्मा का दिन तो जब ही निकल जाता है, ब्रह्मा का दिन ये 1000 युग का साइकिल है, और वो भी 12 घंटे हैं। अब आप मल्टीप्लीकेशन करिए, हम कर नहीं सकते, मगर हम मल्टीप्लीकेशन का आपको बताएंगे कि ब्रह्मा का जीवन कितना बड़ा होता है। पहले तो 4,322,000 मल्टीप्लाइड बाय 1000, वो युग साइकिल, तो ब्रह्मा के 12 घंटे हुए, मल्टीप्लाइड बाय 2 डे एंड नाइट, दिन और रात, मल्टीप्लाइड बाय 30 यानी 1 मंथ, मल्टीप्लाइड बाय 12 यानी 1 ईयर, और मल्टीप्लाइड बाय 100 ईयर्स ब्रह्मा की लाइफ है, इतनी लाइफ होती है। और ये मल्टीप्लीकेशन आप कर सको तो इसका जवाब 311 trillion years और 4 million कैसा कुछ है, 311 trillion याद रखें आप, उससे थोड़ा बहुत ज्यादा है। ये इतनी ब्रह्मा की लाइफ है, और ये ब्रह्मा की लाइफ ये अर्थ ईयर्स में बहुत बड़ी दिखती है, मगर वो इटर्निटी में ये फ्लैश है, ये लाइट नहीं जलती है और बुझ जाती है, नहीं ये बारिश आती है तो बीच चमकती है, वो कितनी थोड़ी देर चमकती है, उतना ये जीवन है ब्रह्मा का। तो हमारा जीवन तो फ्लैश भी नहीं है, और उसमें कितना अभिमान, कितना झगड़ा, कितना फिसाद, वाह 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 वाह, करने को है टाइम हमारे पास, क्यों हम जाया करें। ये बात हम समझ जाएं तो हमारा जीवन कितना कम है वो पता चल जाता है, कि ब्रह्मा के हिसाब में हमारा तो कुछ नहीं है, और जो ब्रह्मा का है वो इटर्निटी के हिसाब में, शाश्वत प्लैनेट्स के हिसाब में वो बिल्कुल बिजली के जैसा है, तो हमारा तो जीवन बिजली के जैसा भी नहीं है, पता नहीं वो फूंक मारता होगा और हमारा जीवन पूरा हो जाता है, और उसमें हम कितनी कितनी दिक्कत उठाते। ये कोई करने की जरूरत नहीं है, जल्दी आप सियाने हो जाइए और जल्दी कृष्ण की तरफ आ जाइए, और कृष्ण की तरफ आने का मार्ग एक ही है, आज से ही राउंड नहीं करते हो आप चेंटिंग तो महामंत्र का, कम से कम एक राउंड तो करिए, फिर आगे देख लेंगे, एक से शुरू करिए तो बढ़ जाएंगे आगे, प्लीज डोंट लीव, नहीं तो हम बहुत ही खुद का नुकसान कर रहे हैं। ये इतनी विनंती करें हम और बंद हो जाए आज यहाँ। ओके, हरे कृष्णा, वेरी नाइस, जय ऑल ग्लोरी श्री भगवान।